சுட்டுக்கு சிந்துமே ले जाए सैयम पाप भर जग से छुड़ाए सैयम सुख के सिंधु में ले जाए सैयम पाप भर जग से छुड़ाए सैयम संसार सागर तेराए सैयम मुक्ति के द्वार पहुँचाए सैयम सुख के सिंधु में ले जाए सैयम पाप भर जग से छुड़ाए सैयम
ओम शांति। विदेश के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक संशोधन संस्था में बहुत सारे चूहे हो गए और वो जो इंस्टीट्यूट थी वहां पर जहर पर बहुत सारे प्रयोग चलते थे पॉइजन, तो वो पूरी संस्था में जहर ही जहर थे रखे हुए, अलग अलग प्रकार के जहर, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स पॉइजन्स, और वहां इतने चूहे हो गए तो उन चूहों को निकालना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने सोचा, वैज्ञानिकों ने, कि क्या किया जाए। तो उन्होंने उन चूहों को पकड़ने के लिए ब्रेड के टुकड़े यहां वहां डाल के रखे, पर चूहे इतने आदि हो गए थे जहर खाने के कि उन्होंने तो ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उनको किसकी आदत पड़ गई थी, जहर खाने की आदत पड़ गई थी। तो उन्होंने सोचा पुराना उपाय किया जाए, वो क्या कहते हैं उसको, जाल, माउस ट्रैप, रैट ट्रैप, पिंजरा, वो रख दिया ट्रैप को और उसके अंदर ब्रेड के टुकड़े डाल दिए। पर वो जो चूहे, जैसे उन्हें देखा ब्रेड है, ब्रेड की तरफ इधर देखा भी नहीं, पहले भी नहीं देखा था, इस ट्रैप के अंदर भी नहीं देखा, तो अंदर फंसने के तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि उनको आदत कौन सी पड़ गई थी, जहर खाने की, और जहर खा खा के बड़े तंदुरुस्त हो रहे थे, दिन रात मोटे ताजे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनको, आदि हो गए थे जहर खाने के। फिर किसी ने सोचा अब क्या किया जाए, तब उन्होंने एक नई युक्ति सोची, वो जो ब्रेड थी उसके ऊपर जहर लेप दिया गया, जहर का लेप लगाया ब्रेड के ऊपर, तब कहीं जाकर चूहे आने लगे और ब्रेड खाने के लिए अंदर घुसे और पकड़े गए। बाकी उनको ब्रेड नहीं खानी थी, उनको क्या खाना था, जहर। ऐसे वो आदि हो गए थे। ये एक रिसर्च विदेश में कभी हुई कि जिससे उन वैज्ञानिकों के निष्कर्ष से मनोचिकित्सक ने साइकोलॉजिस्ट ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ऐसा ही मनुष्य का मन है जो कि जिस चीज का आदि हो जाए उसे वही चाहिए, उसे जहर ही पसंद है, उसे कितना भी अच्छी चीज दो परंतु वो जाएगा जहर की तरफ। छाछ खाने की आदत पुरानी है, छाछ पीने की, इसलिए उसे मक्खन रास नहीं आता। मक्खन खाते खाते बीच बीच में थोड़ी सी छाछ पी ही लेता है। तो ये जो मन है ये उन चूहों जैसा है कि जिनको जिस चीज की आदत पड़ जाती है वही उसको प्यारा लगता है, वही उसको बहुत प्रिय लगता है, फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता चाहे इसके वजह से कितना ही दुख हो जाए। और फिर वो मन इंद्रियों के अधीन रहता है और इंद्रिय जहां उसे ले जाती है वो मन वहां वहां भागता है और इंद्रियों के जो भोग और इंद्रियों की जो वासनाएं और इंद्रियों की जो तृप्ति बस इसी का उसका लक्ष्य होता है, बस इंद्रियों के पीछे। क्या इन इंद्रियों को वश में किया जा सकता है? यह हमेशा से प्रश्न रहा है और द्वापर से अब तक लोगों ने कई सारी विधियां मेथड्स निकाली, ढूंढी, अपनाई, प्रयोग की, परंतु इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए। आज के वरदान में बाबा ने इंद्रियों को वश में करने की विधि बताई है। कर्मेंद्रिय चित कैसे बना जाए या इंद्रिय चित कैसे बना जाए, क्या हम करें कि जिससे ये सारी इंद्रियां वश में हो जाए, क्योंकि योगी अर्थात जिसकी सारी इंद्रियां वश में है, स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, निरंतर योगी, रमता योगी, सहज योगी, सहयोगी अर्थात जिसकी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण है, इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, रिस्ट्रेंड ऑफ सेंसेस। क्योंकि एक भी इंद्रिय यदि वश में नहीं तो वो एक ही इंद्रिय आत्मा को इस तरह डुबो देती है जैसे कोई जहाज और जिसे कोई एक समुद्र में जा रही है और तूफान आ गया और वो तूफान उस नाव को बहा ले जाता है, उसी तरह यदि एक इंद्रिय को भी यदि अनियंत्रित असंयमित छोड़ा जाए तो वो एक इंद्रिय ही आत्मा के पतन का कारण बन जाती है। इसलिए इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है। तो आज हम इस पर थोड़ी चर्चा करें, इंद्रिय चित कैसे बने। सबसे पहले तो इंद्रिय क्या है ये जानना आवश्यक है। बाबा हमेशा शब्द प्रयोग करते कर्मेंद्रिय चित, परंतु भक्ति मार्ग में एक दूसरा शब्द आता है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, दो आते हैं, टोटल 11 इंद्रिया है। सबसे पहला मन कहा गया है और फिर 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म है, कर्मेंद्रिय स्थूल है। योगी अर्थात जिसने इन सभी इंद्रियों को वश में कर रखा है, सबसे पहले है ज्ञानेंद्रिय, 5 है। कौन कौन से? आंख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। रूप आंख देखती है और आकर्षित होती है, जिह्वा रसना लेती है और आकर्षित होती है, नाक सूंघता है और आकर्षित होता है, कान सुनता है शब्द और आकर्षित होता है, त्वचा स्पर्श करती है और आकर्षित होती है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। ये 5 है ज्ञानेंद्रिया। वैसे ही है कर्मेंद्रिया, दो हाथ दो पैर, दो हाथ दो पैर, मुख जो बोलता है स्पीच, 5 चौथा और 5वां उपस्थ और गुदा, the organ of procreation and organ of elimination. इनमें से ये दस इंद्रिय है सबसे ज्यादा उत्पाद करने वाला कौन सा है आंख शास्त्रों में कुछ और दिया है शास्त्रों में लिखा है जननेंद्रिय सबसे ज्यादा उत्पाद करने वाली चीज है उसके लिए संस्कृत शब्द है उपस्थ द सेंसुअल ऑर्गन्स ये वश में करना सबसे मुश्किल काम है उसके बाद कहा है स्वाद जिह्वा कई लोगों ने जिह्वा को नंबर वन पर रखा है क्योंकि जिह्वा जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक खाता है और उसके बाद में फिर कान और उसके बाद में फिर आंखें बाकी सारे सबसे इनोसेंट सबसे निर्दोष बिल्कुल जिससे कम खतरा है वो दो है एक तो नाक और मल द्वार इनको वश में करने के लिए कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है वो मुंह हम अभी बात कर रहे हैं जिनसे बहुत कम खतरा है तो पांच दस इंद्रिय है पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय तो क्या करें कि जिससे ये कर्मेंद्रिय वश में हो जाए एक बहुत बड़े योगी और संत अपनी मरणावस्था में थे शैया पर लेटे हुए जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण संयम से बिताया संपूर्ण नियम और मर्यादाओं से बिताया और वास्तव में योगी थे उनके सारे शिष्य इकट्ठा थे और वो बस मरने को थे उन शिष्यों ने पूछा हमारे लिए कोई संदेश हमारे लिए कुछ बताइए गुरुदेव वो बोलने की भी हालत में नहीं था गले में बहुत दर्द था और वो गुरु कहते हैं अपने शिष्यों से कि मैंने सभी इंद्रियों को जीता अपनी सभी इंद्रियों को जीता परंतु मेरा यह संघर्ष अभी भी जारी है माया मेरे पास आई थी और माया ने कहा कि मैंने सारे विश्व को अपने वश में कर रखा है तुम ही एकमात्र हो जिसने मुझे जीता है माया ने मेरे पास आकर ये कहा कि तुम ही एकमात्र हो जिसने मुझे जीता है सारे विकारों को सारी इंद्रियों को वो कहता है हाँ जीता तो सही परंतु पूरा नहीं जीता अभी तक क्योंकि अभी तक मैं मरा नहीं हूं कुछ क्षण अभी भी बाकी है उसमें भी तुम आ सकती हो इसके लिए मुझे यहां पर अपने आप पर भी भरोसा नहीं इसलिए जीवन के कुछ क्षणों में भी मैं उस प्रभु का चिंतन कर रहा हूं ताकि तू ना आ जाए और इतना कहते कहते वो गुरु अपना शरीर छोड़ देता है तो ये जो इंद्रिय है बड़ी उत्पाती है खुराफाती है उपद्रव करती है घमसान बाबा के शब्दों में इनको कैसे वश में करे तो मक्खन ज्ञान मार्ग और भक्ति छाछ तो ज्ञान मार्ग की छह बातें देखेंगे और भक्ति मार्ग की छह बातें भक्ति मार्ग की बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है और ज्ञान मार्ग की बातें भी महत्वपूर्ण है आज की मुरली में छह विधियां बताई है बाबा ने पूरी मुरली में इधर उधर पड़ी हुई है कर्मेंद्रिय चीत कैसे बने सबसे पहली विधि जो कि वरदान में आई है स्वयं को क्या समझो आशीष भाई सारथी जब तुम ये समझते हो कि मैं सारथी हूं तो रथ मेरे वश में है ये घोड़े मेरे वश में है मैं मालिक हूं वो मालकियत का भाव है जब मैं सारथी हूं तो सबसे पहला क्या समझना है अपने आप को सारथी और जब सारथी समझोगे अपने आप डिटैच हो जाओगे अपने आप अलग हो जाओगे तो कौन सा भाव आएगा साक्षी का और जहां सारथी और जहां साक्षी और जहां सारथी और साक्षी दोनों है वहां योग युक्त है वहां युक्ति युक्त है और वहां सभी कर्मेंद्रिय वश में है कंट्रोल में है अधीन है कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी अर्थात सोल कॉन्शियस स्टेज की प्रैक्टिस अर्थात मुरली में बाबा ने कहा है आत्मा ना मेल है ना फीमेल है आत्मा तो बस आत्मा है बस बस इसी का अभ्यास करो मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा मालिक हूं मैं आत्मा सारथी हूं ये गाड़ी ये शरीर गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूं, शरीर प्लेन है, मैं पायलट हूं, कंट्रोलर। तो ये अभ्यास करना है। दूसरा अभ्यास है अटेंशन और प्रैक्टिस, स्लोगन है आज का। क्या हरि भाई स्लोगन क्या है? अटेंशन और अभ्यास, इसको क्या करो? निजी संस्कार बनाओ तो विजयी होंगे। विजयी बनना है तो अटेंशन और अभ्यास को अपना निजी संस्कार बनाओ। कर्मेंद्रिय जीत बनना एक यात्रा है, इसमें निरंतर अटेंशन की आवश्यकता है। एक पल की लापरवाही, एक पल और बहुत बड़ा पश्चाताप। उस दिन भी कहा था, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की, सेकेंड्स मिनट्स, उन्होंने मिस्टेक की, ब्लंडर कर दिया, कोई गलती, कोई गफलत, कोई पाप, कोई विकर्म, और सदियों ने सजा पाई। लंबा समय तक पश्चाताप, क्यों कर दिया? अगर उस समय वो 10 मिनट, वो 5 मिनट कंट्रोल कर लिए होते तो जितने संसार में बंदी ग्रह है, प्रिजन्स, अगर हम एक एक प्रिजनर से जाके मिले तो वो यही कहेंगे कि 5 मिनट में क्या हो गया था पता नहीं, वो 10 मिनट में क्या हो गया था पता नहीं, कैसी वासना, कैसा पाप, कैसा क्रोध और कैसा विकार प्रवेश हो गया था कि वश में नहीं कर पाए और पाप हो गया और अभी 10 साल 20 साल जेल में, कारागार में। इन दैट मोमेंट लाइज द इटर्निटी, उस पल में ही सदी छिपी थी परंतु नहीं रोक पाए। तो क्या चाहिए यहां पर इस ज्ञान मार्ग में? अटेंशन और अभ्यास, निरंतर अभ्यास। वो महाभारत ने उदाहरण दिखाया है, अर्जुन आधी रात को बैठकर तीरंदाजी प्रैक्टिस अभ्यास कर रहा है। गुरु बाहर आके पूछते, अरे अर्जुन तुम इतनी रात गए क्या कर रहे हो? वो कहते हैं अभ्यास, और ये मैंने अपने भैया से सीखा। कौन से भैया से? भीम से। भीम से क्या सीखा? भीम आधी रात में अंधेरे में बैठकर खाना खा रहा है, खीर पी रहा है, अर्जुन सुनता है आवाज, रसोई से आवाज, इतनी आधी रात को अंदर जाके देखता है तो भीम खीर पी रहा है, खीर खा रहा है। वो कहता है, आपको खीर दिखाई देती है इतने अंधेरों में? भीम कहता है, अर्जुन आंख उंगलियों में भी आंखें होती है। अभ्यास अर्जुन, अभ्यास, अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। उंगलियों में क्या होती है? आंखें होती है। वो देखा ना, टाइप करने वाले नीचे देखते है क्या? टाइपिस्ट नीचे ऊपर देख के टाइप करते हैं, उंगलियों में आंखें हैं। तो क्या चाहिए? अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। तो आधी रात को अभ्यास करते रहता है, कुछ भी अभ्यास करते रहो, आदत हो जाएगी, मास्टरी हो जाएगी। कुछ भी, ऐसा असंभव कुछ है ही नहीं संसार में। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस। ऐसे 1960s में जो रिकॉर्ड बने, लोगों ने कहा ये फाइनल है, बस इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। 2 साल के बाद वो रिकॉर्ड टूट गया, नए ने कम समय में वो रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे कितने कीर्तिमान बने और टूटे, कीर्तिमान बनते ही है टूटने के लिए, रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए, और हमें वो बनना है जो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। तो क्या चाहिए? कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए, ये कर्मेंद्रियों का भी स्वभाव है भागने का, जबान का स्वभाव है भागने का, चटोरापन, खाऊं खाऊं, दिन रात क्या खाऊं, यही उसकी चिंता है। सुबह उठते ही क्या होगा नाश्ते में, नाश्ता पूरा हो गया कि भोजन में क्या होगा, भोजन पूरा हुआ कि दोपहर में और कुछ खाना है कि टोली वगैरह। अपने दांतों से अपनी कब्र खोदने में लगा है व्यक्ति। अपने पेट के साथ जितना अत्याचार व्यक्ति करता है उतना और किसी अंग के साथ नहीं करता, और जीवन भर बीमार होकर पड़ा रहता है। तो जबान इंद्रिय है। तो दूसरी मेथड है प्रैक्टिस, उसको वो नहीं देखने तो जो वो देखना चाहता है और जिससे हानि है, उसे वो नहीं पढ़ने दो जो हमें पता है श्रीमत अनुसार नहीं है। अटेंशन अर्थात निरंतर ध्यान, निरंतर अवेयरनेस कि ये करना है ये नहीं करना है, जागरूकता, यही अध्यात्म है. अध्यात्म अर्थात अवेकनिंग, अध्यात्म अर्थात एनलाइटनमेंट, अध्यात्म अर्थात सजगता, निरंतर सजगता. सो नहीं जाना है, सोए कि गए, झपकी लगी और गए, बेहोश हुए और गए, बेहोश हुए मूर्छित हुए और गड्ढे में गिरे. जरा भी ज्ञान के प्रति लापरवाही. इसके लिए कल की मुरली में क्या था, सारे दिन रात भर विचार सागर मंथन करो, हर समय विचार सागर मंथन चलता रहे. आज की मुरली में है रावण को कोई नहीं जानता, पंडित आचार्य विद्वान तीनों में से कोई भी रावण को नहीं जानता, इंटेलेक्चुअल जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं वो भी नहीं जानते, तुम जानते हो केवल. रावण को क्यों जलाते हैं कोई नहीं जानता, केवल तुम जानते हो. क्या वास्तव में जानते हैं? भगवान को जानना आसान है, रावण को जानना उससे भी कठिन. तो दूसरी मेथड है अटेंशन, और तीसरी मेथड है पवित्रता और सरेंडर. मुरली में बाबा ने उदाहरण दिया है उस कन्या का जो हमेशा दिया जाता है. कन्या शादी से पहले क्या करती है, उसके चरणों में सब झुकते हैं, वंदना पवित्र की होती है. शादी के बाद वो सबके चरणों में झुकती है, सारा मदार प्यूरिटी पर है. और जितना मन पवित्र है उतना वो इंद्रियों को वश में कर सकता है. स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, कहा है, द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल. जितना वो पवित्र होगा उसको वश में करना उतना आसान है, जितना उसमें मैल होगा उसको वश में करना कठिन है. प्योर जितनी हो, जितनी प्योरिटी उतना वो वश में. इंद्रिय जीत बनने की विधि है प्योरिटी. और दूसरा बताया परवाने. परवाने जैसे फिदा होने वाले, फेरी लगाकर जाने वाले नहीं, जो समर्पण है वो स्वतः ही इंद्रियों को वश में कर सकते हैं. योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनका वहन करता हूं, मैं उनके लिए जिम्मेवार हूं. जो इस तरह समर्पण रहते हैं मन से बुद्धि से एक के आगे, स्वतः ही इंद्रिया वश में हो जाती है. यह है तीसरा. चौथा, सात दिन की भट्टी और नारायणी नशा. एक जगह बाबा ने कहा है उनको, सात दिन की भट्टी में जब तक रंग ना चढ़े बाहर नहीं जाओ. रंग चढ़ जाना चाहिए, वो भी पक्का रंग चढ़ जाना चाहिए. अपने आप को भट्टी में बिठाना है, जब तक इस भट्टी में नहीं बैठेंगे तब तक इंद्रिया वश में नहीं होगी. एक एक इंद्रियों को योग अग्नि से तपाओ, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के. एक एक इंद्रियों को क्या करो, योग अग्नि से तपाओ, तपने दो उनको, जलने दो उसमें. जिह्वा को, आंखों को, रूप रंग स्पर्श शब्द गंध अलग कर दो विषयों से और एकांत में बैठने दो, तब वो इंद्रिया तपेगी, तब योगी इंद्रिय जीत बनेगा. तो क्या करो, सात दिन की भट्टी में बिठाओ. अगली मेथड है धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए. कुछ भी हो जाए और साथ में है दान, हर चीज में दो दो है. धरत पढ़िए और दान करो, पांच विकारों का दान करो तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे, ग्रहण छूटेगा. कुछ भी हो जाए अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, दिनचर्या में कितनी भी हलचल, कितनी भी सेवा में व्यस्त, या फिर किसी से फोर्स जो ज्ञान में नहीं चलते उनसे दबाव, कुछ भी, धारणाओं पर पक्का रहना. एक दिन उनको भी झुकना पड़ेगा. जो कहते हैं कि नहीं 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 ठीक है, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, बाबा ने कहा है श्रीमत छोड़कर किसी को सुख देने का संकल्प नहीं करो, मर्यादा छोड़कर किसी को सुख देने का संकल्प नहीं करो. उसको बुरा लगेगा लगने दो, परंतु हमने मर्यादा तोड़ी तो गए. और लास्ट छठवा मम्मा की मुरली है, जिसमें मम्मा ने कहा ओम के विषय में है. वो लोग ओम उच्चारण तो करते पर अर्थ कुछ नहीं समझते. ओम का तो अर्थ तब समझ में आए जब ओम के अर्थ में स्थित हो जाओ. उसमें एक बात कही है, ज्ञान योग की वास धूप. ये वास धूप जला के रखना है तब इंद्रिय जीत बनेंगे. और दूसरा, परमपिता परमात्मा कहते हैं एक से बुद्धि योग लगाना, एक ही से बुद्धि योग लगाना तब कहीं जाके इंद्रिय चित बनेंगे। ये इंद्रियां बड़ी ही उपद्रवी है, वश में नहीं आती है, भागती है, उसका स्वभाव है भागने का, विषय की तरफ भागती है। यहां से मार्केट की तरफ जाओ हजार चीजें दिखती है, सोचता है ये देखू वो देखू, लेना कुछ नहीं है, विंडो शॉपिंग। करना कुछ नहीं है पर देखना है, बीमारी कोई नहीं है पर डॉक्टर कोई मिल गया तो दे दो कोई दवाई विटामिन वगैरह ताकत की, कमजोरी तो है ही वैसे भी। भागने का उसका स्वभाव है। गीत, संसार के विकारी गीत, विकारी साहित्य पढ़ना सुनना इंद्रियों की चंचलता है। तो ये छह मेथड से ज्ञान मक्खन, अभी छाछ नहीं कहेंगे वैसे तो, वो भी बड़ी स्ट्रांग और पावरफुल मेथड से, द्वापर से अब तक जो संसार को आत्माओं ने थमाया इन्हीं की वजह से थमाया। भक्ति मार्ग में भी या सन्यास मार्ग में भी कर्मेंद्रिय जीत बनने पर बहुत सारा पुरुषार्थ किया गया है। सबसे पहली मेथड है कर्मेंद्रिय जीत बनने की या कंट्रोल ऑफ सेंसेस की। सिक्स मेथड्स में सबसे पहले आसन और प्राणायाम, आसन और प्राणायाम। आसनों से लोगों ने स्वयं को वश में करने का प्रयत्न किया, आसनों से शरीर को जीता और प्राणायामों से श्वास को जीता। उन्होंने देखा कि जब श्वास को जीत लेते सारी इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाती है, और जब शरीर लोच आ जाता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, अपने आप इंद्रिय वश में आने लगती है। तो उन्होंने ये एक मार्ग बताया है, प्राणायाम और आसन इंद्रिय जीत बनने का। दूसरी मेथड बताई दमन और प्रत्याहार। दमन अर्थात सप्रेशन, दमन करो इंद्रियों का, वो देखना चाहती है उसको नहीं दिखाओ, जबरदस्ती करो उसके साथ, ये नहीं करना है बस। ये भी काम करता है, बहुत काम करता है, दमन भी काम करता है। और नहीं तो अगर पूरी खुली छूट दी जाए इंद्रियों को तो वो तो भागते रहती है, भागते रहती है, भागते रहती है, कोई रुकने का नाम ही नहीं है उसको। उसको कहो खाओ तो खाते रहेगा, खाते रहेगा, खाते रहेगा, खाते रहेगा। उसके रहो देखो, देखने से कुछ नहीं होता, देखते रहेगा, देखते रहेगा। तो दमन भी आवश्यक कहा हुआ है, और उसके साथ है प्रत्याहार। प्रत्याहार अष्टांग योग में एक अंग है। प्रत्याहार अर्थात वो जो इंद्रिय विषय है उसको ही दूर कर देना, और इतना दूर हो जाना उससे कि फिर उसके प्रति इंटरेस्ट ही रहेगी, खत्म हो गया पूरा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कोई भी चीज हो। वो प्रत्याहार इज कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट। आसन प्राणायाम, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग है। तो इसमें प्रत्याहार और दमन, लगभग दमन और प्रत्याहार जुड़े हुए हैं। उसके साथ जबरदस्ती करना नहीं, मतलब नहीं बस छोड़ दो, ये छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, अब देखना ही नहीं है उसको, चाहे खाने की चीज, चाहे देखने की चीज, चाहे स्पर्श करने की चीज, चाहे कोई सुनने की चीज। हमारा एक दोस्त था, उसकी माताजी जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी एक चीज छोड़ के आती थी, खाने की, जो उसको बहुत पसंद थी वो छोड़ के आती थी। एक बार गई गुलाब जामुन छोड़ दिया, दूसरी बार कहीं गई जिलेबी छोड़ दी, जहां जाएगी एक चीज, साल में दो तीन बार यात्रा करती थी और कुछ ना कुछ छोड़ के आती थी वहां से। तो प्रत्याहार और दमन ये भी आवश्यक है, ये दूसरा। तीसरा है व्रत और उपवास। व्रत और उपवास फास्टिंग, ये जो जिह्वा है इसको यदि वश में करना है तो बीच बीच में उपवास की बहुत ज्यादा आवश्यक है, व्रत रखने की आवश्यकता है। कोई कोई व्रत ऐसे व्रत कि हम ये करेंगे बस, करना है मतलब करना है, व्रत और उपवास। जब तक और सारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय ऐसी है अगर वो वश में आ जाए तो सारी इंद्रिय ठंडी पड़ जाएगी। वो कौन सी है? जीवा, जीव, टेस्ट। टेस्ट को जीता तो सब जीता, टेस्ट को नहीं जीता तो कुछ भी नहीं जीता। एक को वश में करो 90% ठंडी पड़ जाएगी सारी। इसको छोड़ दिया और बाकी सब कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं होगा। तो व्रत और उपवास, उसके बाद है विचार और विवेक। विचार करना, किसी बात को ऐसी स्वीकार नहीं करना, विचार करना, विवेक लगाना, सोचना क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। इसी तरह का जीवन अगर चल रहा, इसी तरह से विकारी, भोग वाला, पाप वाला, इंडल्जेंस वाला, तो इसका परिणाम क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य भी रहेगा कि नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं है। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि आज सारे दिन भर मैं बीमार नहीं पड़ूंगा विश्वास के साथ? एक्सीडेंट होना वो अलग चीज है, वैसे बहुत कम है जो कह पाएंगे। तो विचार, सोचना और विवेक लगाना, विचारना, ये एक ऐसी चीज है कि बहुत कम कम होती जा रही है। विचार करना, थिंकिंग, चर्न, चिंतन करना उसका, ये बहुत कम कम होते जा रहा है। उसके बाद है इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, विल पावर और सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन दो चीजों से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। अपने अंदर इच्छा शक्ति जागृत करनी है कि ये मैं करूंगा, ये मैं कर सकता हूं। विल से कुछ भी हो सकता है, विल पावर टू स्टॉप, टू गिव अप थिंग्स। जैसे एक एक्सपेरिमेंट साइलेंस के ऊपर किया जा सकता है कि ये 2 घंटा बोलना ही नहीं है, सुबह या शाम को, जब ड्यूटी आवर्स में नहीं है तब। ये एक्सपेरिमेंट है, ये है एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये जो कंट्रोल टंग ऑफ स्पीच है, ऑर्गन ऑफ स्पीच है, उसके कंट्रोल के लिए। या फिर आज सारे दिन भर शुगर खानी नहीं है, कुछ होगा नहीं है, चिंता नहीं करो, बीमार बीमार नहीं पड़ोगे, या तो जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। पर ये जरूरी है, उससे भी बड़ा प्रयोग है नमक का, वो भी बीच बीच में करके देखना। नमक न खाने से क्या होता है? क्रेविंग होगी थोड़ी सी, पर वो भी एक प्रयोग है इंद्रिय जीत बनने का। तो क्या बताया? इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। कितने हो गए? 5? 6 हो गए? सब 2-2 है, 2-2 की जोड़ी हर जगह पर, एक नहीं है। उसके बाद में है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य और उसके साथ त्याग, वैराग और तपस्या। बिना ब्रह्मचर्य के, भक्ति मार्ग में कहा हुआ है, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता है। बिना संपूर्ण पवित्रता की धारणा के इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता है। और उसके साथ साथ क्या क्या चाहिए? वैराग। जो व्यक्ति चिपका हुआ है संसार से, वो कभी इंद्रिय जीत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति डूबा हुआ है भोगों में, वो कभी इंद्रिय जीत नहीं बन सकता। वैराग चाहिए, त्याग चाहिए और तपस्या चाहिए। इंद्रिय जीत बनने के लिए क्या चाहिए? तप। तप में स्वयं को तपाना है। जितना जो तपस्या में स्वयं को तपाएगा, उतना स्वतः ही इंद्रिय जीत धीरे धीरे बनता जाएगा। और इंद्रिय जीत एक बहुत मीठी अवस्था है, बहुत हायर स्टेज, जिसपे जैसे बाबा ने कहा सारथी, उसको कंट्रोल, मेरे हाथ में ये खुशी रहती है, मेरे वश में ये खुशी रहती है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति जो अपने वश में नहीं है, जिसकी इंद्रिय वश में नहीं है, दुखी रहता है अंदर से। बाहर से कितना भी सुखी बताए पर अंदर से दुखी रहता है। गुलाम की अवस्था है वो, गुलामी की स्थिति है, दासता की अवस्था है। इसके लिए सारी इंद्रियों को वश में करना ये एक अभ्यास है। कान को वो नहीं सुनने दो जो उसको पता है ये नहीं सुनना चाहिए। हाथों को वो स्पर्श नहीं करने दो जो उसको पता है ये स्पर्श घातक हो सकता है। ये जो इंद्रियों के संपर्क से जो सुख है वो दुख में रूपांतरित होता है। गीता में एक जगह है, वो सारे सुख जो टच बॉर्न है, वो सारे सुख जो टच से उत्पन्न होते हैं। चमड़ी चमड़ी को स्पर्श करे, टच टच हो, वो सारे सुख अंततः दुख में रूपांतरित होते हैं। ऑल टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। इसके लिए और पहले जब किसी चीज की एडिक्शन है, लत है, उससे जब बाहर आता है व्यक्ति बहुत पीड़ा होती है। जो बहुत प्यारी चीज है उसको छोड़ने में बड़ी पीड़ा होती है, नहीं छोड़ना चाहता है। परंतु परिणाम सुखद होगा, परिणाम अमृत होगा। ये पुरुषार्थ पहले विष की तरह है, बाद में ये अमृत बनेगा। तेन तत्वेन भुग्निता। इस संसार की वस्तुओं का उपभोग कैसे करो, इनको छोड़कर, ऐसा वाक्य है। कोई चीज एंजॉय करनी है ना, कैसे एंजॉय करो, उसको छोड़ दो और एंजॉय करो, उल्टा वाक्य है। एंजॉय द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बाय रिनाउंसिंग देम। ये परम उपभोग है, परम भोग ये है, सुप्रीम इंडल्जेंस बाय गिविंग देम अप। तो भक्ति मार्ग की 6 बातें और ज्ञान मार्ग की 6 बातें फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला बताया क्या करो कर्मेंद्रिय जीत के लिए, सारथी और साक्षी। दूसरा अटेंशन और अभ्यास। तीसरा प्यूरिटी और सरेंडर। सारा मदार प्यूरिटी पर है और वो परवाने बनो जो केवल घूम कर जाने वाले नहीं है, जो फिदा हो जाए। चौथा धरत पड़िए, धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए पर अपना धर्म नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, चाहे जग वैरी हो जाए, अपनी प्यूरिटी और अपनी ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं छोड़ना, चाहे कोई कुछ भी करे। अगला पांचवा, 7 दिन की भट्टी में स्वयं को बिठाना है और नारायणी नशा चढ़ाना है। बाबा ने कहा इसमें रंग पक्का हो तब कहीं बाहर निकलो, जब तक पक्का ना चढ़े निकलना ही नहीं बाहर। रंग रंग में रंग जाए, उस रंग में, परम रंग में। और लास्ट बताया जो मम्मा की मुरली में आया है, ज्ञान योग की वास धूप जगा के जला के रखो। निरंतर योग का चार्ट बढ़ाते रहना, निरंतर ज्ञान के चिंतन मनन अध्ययन को बढ़ाते रहना, निरंतर हमारे कान ज्ञान की ही बातें सुनते रहे। कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई नोट्स, कोई ना कोई चिंतन, कुछ ना कुछ चालू रहे। एकदम ज्ञान के चिंतन से सीधा संसार और विकार के चिंतन में नहीं चले जाए। कल कहा ना, काम गिराता है, लोभ गिराता है, अवस्था ऐसी मजबूत हो पक्की कि तुम गिरो ही नहीं, धारणा हड्डी हो कि गिरो ही नहीं तो गिरते हैं। तो ये 6 बातें हैं मक्खन ज्ञान मार्ग की, 6 बातें बताई भक्ति मार्ग की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आसन और प्राणायाम। थोड़ा भी कोई प्राणायाम करे तो ध्यान शरीर से हटके थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, शरीर में ध्यान नहीं रहता है, शरीर के ऊपर की अवस्था है वो। और आसन से शरीर में लोच आएगी, शरीर फ्लेक्सिबल होगा और जो फ्लेक्सिबल बॉडी है वो अपने आप को ज्यादा कंट्रोल महसूस करती है, अपने वश में, इंद्रियों को वश में महसूस करती है। पहला। दूसरा दमन और प्रत्याहार। कुछ कुछ चीजों का दमन भी बहुत आवश्यक है, जो हमको पता है ये हमारी कमजोरी है, स्टॉप कर दो उसको, संकल्प करो 3 दिन ये देखना ही नहीं है। 3 दिन गो ऑफलाइन, बड़ा मुश्किल पुरुषार्थ है ऑफलाइन का। वो वैसा ही एडिक्शन है वो भी एक। वो महिला कहती है कि वो रिहैब सेंटर होते हैं ना, पुनर्वसन केंद्र, तो एक महिला है जिसको इंटरनेट का एडिक्शन है, तो उसको कहा जाता है कि तुम उधर जाओ रिहैब सेंटर में, पुनर्वसन केंद्र में एक मास के लिए। वो कहती मैं जाऊंगा प्रोवाइडेड कि वहां वाईफाई है, तो नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी किस लिए? इंटरनेट के व्यसन से मुक्ति के लिए, पर अगर वाईफाई होगा तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, इतना एडिक्शन है। तो ये सारी जो चीजें हैं, संसार में कुछ नहीं होने वाला, कोई मरने वाला नहीं है अगर तुम ऑफलाइन हो गए तो, डॉक्टरों की बात अलग है। तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कहीं पर भी। तो दमन और प्रत्याहार, नहीं बोलना मतलब नहीं बोलना, अपने आप को संकल्प दो, एक घंटा बोलना ही, बात ही नहीं करनी है। अपने आप को संकल्प दो ये आज खाना ही नहीं है, आज खाना फीका खा के देखेंगे, मर नहीं जाएंगे, मरने की चिंता नहीं करो, संकल्प करो आज अचार रोज खाते, आज नहीं खाएंगे, देखना क्या होता है, कंट्रोल बढ़ जाएगा शाम तक। आज भोजन करते ही मीठा खाने की हैबिट, इच्छा और आदत सी बन गई है, सोचो आज नहीं खाएंगे कुछ नहीं होगा, कंट्रोल बढ़ेगा, रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम विकास होगा। उसके बाद उपवास और व्रत, कोई भी व्रत ले लेना, इंद्रिय जीत बनना बिना व्रत के संभव ही नहीं है, व्रत होना चाहिए। कल कहा था वायदा फायदा, वायदा फायदा, कल परसों, परसों तो वायदा फायदा। तो व्रत कौन सा व्रत लेंगे हरि भाई? कौन? विजयी बनने का। थोड़ा प्रैक्टिकल, दूसरा जीवन का, छोटी छोटी आदतें के लिए व्रत लेना है कि ये हम करते हैं रोज रोज, इसके साथ में 10 मिनट टाइम वेस्ट करते हैं व्यर्थ की बातें करके, आज बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, मिलने दो उसको, चुप बैठेंगे, उसको भी आदत पड़ जाएगी कि अभी ये बदल गए। व्रत छोटे छोटे, छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे अच्छे अच्छे आदतें हैबिट्स नई क्रिएट करनी है। जैसे उस दिन कितना डिस्कस किया यहाँ पर, बाबा को बार बार बुलाने की आदत, बाबा का बार बार आह्वान करने की आदत, बाबा के कमरे में बार बार जाने की आदत, बार बार योग में बैठने की आदत, नई नई आदत, चिंतन करने की आदत, मुरली जो सुनी उसकी पॉइंट्स याद करने की आदत, नहीं तो मुरली तो हजारों सुनी और कहाँ गई पता ही नहीं, नाम निशान नहीं है उसका, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है कोई पॉइंट, ऐसा जंगल, ऐसी वीरानी छाई है। इमर्ज रूप में हो, ज्ञान इमर्ज हो, पॉइंट्स इमर्ज हो, चिंतन इमर्ज हो, ज्ञान का डिस्कशन होता रहे। क्यों हमने आज ज्ञान का डिस्कशन नहीं किया? आदत डालो उसको, कोई मिले जिसको ज्ञान योग में इंटरेस्ट है उससे थोड़े डिस्कस करो, उसको बताओ ये आज बाबा ने कहा इसका क्या अर्थ है, बाबा ने ये कहा इसका क्या अर्थ हो सकता है, ये छाछ क्या होती है, ये मक्खन क्या होता है, बटर बटर मिल्क में क्या अंतर है, उस पर चिंतन करो, What is the difference between yogurt and buttermilk? उस पे चिंतन करो, दही और छाछ में क्या अंतर है और मक्खन क्या है, कुछ भी चिंतन हो सकता है ज्ञान का, कोई भी पॉइंट कहीं से भी उठाओ और चिंतन करो, निजी संस्कार बनाओ, निजी संस्कार क्या क्या है, दो तो बता दिए अटेंशन और प्रैक्टिस, और क्या क्या है, चिंतन, चिंतन के बिंदु के मुरली से उठाओ और बुद्धि को बिजी कर दो, ये बिजी रहना ही एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है, एक व्रत है, ये बिजी रहना ही आत्मा को ऊपर उठाएगा, नहीं तो उसी में उन्हीं विचारों में उन्हीं दुख के दर्द के पास के भविष्य की चिंताएं, व्यक्ति मित्र संबंधी, कल कहा ना मित्र संबंधियों को याद करते आत्मा मैली हो जाती है, किचड़ा पड़ता है उसमें, वही उसमें उससे निकल ही नहीं पाती है, और वहीं बैठे बैठे प्रश्न पूछते रहते फोन पर, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, अमृत वेला शक्तिशाली कैसे बने, परमधाम में कैसे स्थित हो जाए, और प्यूरिटी का क्या करे, यही प्रश्न पूछते रहते दिन रात, किसी प्रश्न का कोई उत्तर उनको मिलता नहीं कहीं से, बस जो नया व्यक्ति मिला उसको पकड़ो और पूछो, अगला बताया भक्ति मार्ग में, अगला व्रत और उपवास के बाद इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, विल पावर, विल पावर से इंद्रियों को वश में किया जाता है, इच्छा से विथ स्ट्रांग विल, जितना स्ट्रांग विल होगा इंद्रिय वश में होगी, और आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूं, किसी ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर एक ने कुछ किया तो हर एक कर सकता है, यदि एक संपन्न बना तो दूसरे भी बन सकते हैं, इफ वन कैन डू एवरी वन कैन डू, ये संकल्प रखना है आत्मविश्वास। अगला बताया ब्रह्मचर्य, और उसके साथ तीन चीजें, ब्रह्मचर्य जब तक नहीं तब तक इंद्रिय वश में नहीं हो सकती है, बाकी सब कुछ ठीक है, ब्रह्मचर्य ही खंडित हो रहा है, इंद्रिय वश में नहीं होगी, बाकी सब ठीक है, सेवाएं दिन भर कर रहे, मुरली पढ़ रहे पढ़ा रहे, चिंतन कर रहे, ज्ञान का डिस्कशन भी कर रहे, परंतु ब्रह्मचर्य टूट रहा है, इंद्रिय वश में नहीं होगी, कहीं ना कहीं इंद्रिय धोखा देगी, भागेगी कहीं ना कहीं। और बाद में तीन चीजें बताई, त्याग वैराग और तपस्या, बिना वैराग के। और जो आत्मा इस संसार से चिपकी हुई है, जिस आत्मा को इस संसार, आज कहा ना भ्रष्टाचारी दुनिया है, वेश्यालय है, ये दुख ही दुख है, यहां पर मुरली में एक वाक्य आया है, बस तीन ही लाइन है, दुख ही दुख, फुल स्टॉप, इस संसार में दुख ही दुख है, जो ऐसे अनित्यम असुखम लोकम, दुखमय संसार से चिपके हुए हैं, वो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, जिन्हें इन संसार से वैराग है वो इस इंद्रियों को, आत्मा स्वयं को वश कर सकती, वश में रख सकती है। तपस्या फिर है, तपस्या तपना, स्वयं को झोंक देना उस तपस्या के कुंड में, अग्नि में, कि तुम जैसे कहा ना सात दिन की भट्टी, अपनी भट्टी स्वयं निर्धारित करनी है, तीन दिन की भट्टी, दो दिन की भट्टी, एक दिन की भट्टी, अपनी भट्टी खुद ही डिसाइड करनी है, जैसे आज मेरी भट्टी है, मधुबन में आए हैं, आज भट्टी है सारा दिन मौन, आज भट्टी है केवल फीका खाएंगे, आज भट्टी है ज्ञान चिंतन करेंगे, आज भट्टी है मुरली को लिखेंगे, आज भट्टी है मुरली का 10 बार पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे, ऐसी ज्ञान योग धारणा सेवा, ये भट्टी करनी है, तब कहीं जाके हम क्या बनेंगे, इंद्रिय चित्त ओम शांत। वो फिर भी ठीक है, जो बहुत बोल रहे उनसे तो ठीक है, फिर भी ठीक है, वो जो इशारों से बोलते फिर भी ठीक है, क्योंकि अपनी ऊर्जा तो बचा रहे, ऊर्जा तो बचती है फिर भी, क्योंकि बोलने से ही ऊर्जा खत्म होती है, हाँ बोलना है तो केवल ज्ञान योग या सेवार्थ, बाकी व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातें आत्मा की ऊर्जा को नष्ट करती है। ओम शांति।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान।